أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. 1442 ہجرہ کے ایام عزا کی آج ہماری 8th مجلس ہے، 7th آف محرم کی ڈیٹ ابھی گزری ہے، شب 8 ہے، اور آج کی مجلس کے لیے سورہ محمد کی ایک آیت کو تلاوت کیا گیا ہے. سورہ محمد قرآن کریم کا سورہ نمبر 47 ہے، اور اس کی اس آیت کے حوالے سے اللہ کے رسول کا ایک بڑا طویل خطبہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر دیا تھا. یہ وہی خطبہ ہے جس میں روایت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی ہے، اور اس خطبے کے درمیان سلمان فارسی نے پیغمبر سے بہت سارے سوالات کیے تھے. اس خطبے کا ٹاپک پیغمبر نے اپنے آخری خطبے میں، اپنے آخری حج میں تو ایک وہ خطبہ دیا، ورلڈ فیمس خطبہ، لاسٹ سیرمن یا لاسٹ حج کا سیرمن. اسی ٹریول میں پیغمبر نے غدیر خم کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان دو خطبوں کے بیچ میں اسی حج میں جو پیغمبر کی زندگی کا فرسٹ اینڈ لاسٹ حج تھا، حج واجب ہونے کے بعد رسول اللہ نے صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے، وہی ان کا فرسٹ حج ہے، وہی ان کا لاسٹ حج ہے. تو اس میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس خطبے میں آخری امام کا ذکر تھا اور آخری زمانے کی نشانیاں، سائنز آف ظہور. قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں یہ خطبہ علماء لکھتے ہیں، تو یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت خود آیت کیا ہے جس کی تفسیر میں یہ خطبہ کوٹ کیا جاتا ہے؟ آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا یہ لوگ یہ ویٹ کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان پر آئے گی سڈنلی، فقط جا اشرات ہوا، جبکہ سائنز آف قیامت آ گئی. اچھا، اب اس آیت میں لفظ قیامت نہیں، لفظ ساعہ، الساعہ. یہ الساعہ قیامت کو بھی کہتے ہیں، اور یہ الساعہ ظہور امام کو بھی کہتے ہیں. جیسے خود لفظ قیامت اس ڈے آف ججمنٹ کے لیے بھی ہے اور ظہور امام کے لیے بھی ہے. قیامت قیامت صغرا قیامت کبرا. اسی طرح ایک لفظ اور قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے الساعة. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو الہی عظم البلا کی دعا کے آخر میں بھی الساعة 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 الاجل الاجل الاجل. سورہ محمد کی آیت میں لفظ الساعة آیا ہے فَحَلْ يَنظُرُونَ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ساعت جو ہے، یہ قیامت جو ہے، جو ظہور امام ہے، ان تاتیہم بختتن، اچانک ہو جائے گا؟ بھئی یہ بیٹھے ہوئے سب لوگ آرام سے اور اچانک مالو سڈنلی امام اپیئر ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، اس کی سائنز ہیں، جو سائنز ظاہر ہو گئی. اور پھر پیغمبر نے اسی آیت کو یہاں تک تلاوت کر کے وہ سائنز آف ظہور، ریمیننگ سائنز آف ظہور بتائیں. کل رات کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا نا کہ خود پیغمبر اسلام کی رسالت سائنز آف ظہور میں سے ایک ہے. اچھا، اب یہاں پہ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری حج میں ہے؟ نہیں، آخری حج بھی ہے اور پیغمبر کی زندگی کا یہ آخری سال ہے. 10th of ذلحج کو حج مکمل ہوتا ہے، 9th ذلحج، 10th ذلحج، جو سمجھیے. اور within 3 months پیغمبر کی وفات ہو گئی. تو بالکل یہ پیغمبر کی زندگی کے لاسٹ اسٹیجز. یہاں پہ پیغمبر نے آخری امام کا تذکرہ کیا. ابھی پہلے امام کی ولایت اور امامت بہت ہی اوپنلی پبلک کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ اس خطبے کے بعد جب پیغمبر مکے سے نکلے تو غدیر خم کے میدان میں میرے مولا کی ولایت کا ایک آفیشلی اناؤنسمنٹ ہوا ہے. اگرچہ پیغمبر اپنی زندگی میں بار 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 علی کی ولایت، علی کی امامت، علی کی وصایت کا اعلان کرتے آ رہے تھے، لیکن ایک آفیشل وے کے اندر غدیر خم کے میدان میں من کنتو مولا کا اعلان تھا، یہ اس سے بھی پہلے کا خطبہ. اور میں نے ایک مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے، معراج مکے میں واقع ہوتی، یعنی ہجرت سے بھی پہلے، ہجرت تاریخ اسلام کا وہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے کہ جہاں سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی مولا نے فکس کیا. اور ہجرت میں پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی. ابھی پہلی اسلامی حکومت بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، مسلمان ابھی مکے میں، اور پیغمبر معراج پر گئے تو سفر معراج میں پیغمبر کو آخری امام کے بارے میں وحی نازل ہوئی آسمان پر. ساتویں آسمان پر پیغمبر پہ آخری امام کے بارے میں وحی نازل ہوئی، اگرچہ وہ پہلے مولا کے بارے میں بتایا. معراج کے سفر کا پرپز ہی میرے مولا کی ولایت تھی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. قرآن کہہ رہا ہے 15th پارے کی پہلی آیت، سورہ نمبر 17 بنی اسرائیل کی پہلی آیت، کہ اللہ اپنے بندے کو رات کے وقت آسمانوں پہ لے گیا تاکہ اپنی لنورے یہو، تاکہ اس کو دکھائے من آیاتنا، اپنی نشانی. اور مولا نے بار بار کہا انا آیت اللہ الکبرا، اللہ کی سب سے بڑی میں نشانی میں. اور اسی نشانی کو دکھانے کے لیے پیغمبر کو آسمان پہ بلایا گیا سفر معراج. تو روایت یہ ہے کہ اس سفر معراج میں آخری اسٹیج میں اللہ نے سوال کیا کہ اے میرے حبیب، اب یہ ڈائریکٹ سوال و جواب ہو رہا ہے، یہاں جبرائیل کا انوالومنٹ نہیں، اے میرے حبیب کیا تو نے اپنے لیے اپنا ایک وصی منتخب کر لیا؟ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اس کا جانشین ہوتا ہے، اس کا سکسیسر ہوتا ہے. کیا تو نے اپنے لیے اپنا وصی منتخب کر لیا؟ क्या तूने चूज कर लिया है तेरे बाद तेरा वसी कौन होगा? पैगंबर ने कहा कि खुदावंद, मुझे नबुवत भी तूने अता की है, तो मेरा ये दिल चाहता है कि मेरा वसी भी तू ही बना। अब ये अल्लाह और रसूल के बीच में जो बातचीत हो रही है, ये हमें और आपको समझाने के लिए कि सक्सेसर और जानशीर रसूल भी नहीं बनाता, अल्लाह बनाता है। या मुसलमान कहते हैं कि जी हम सब एक जगह जमा हो जाएं, वोटिंग कर लें, जिसको ज्यादा वोट मिल जाए वो हमारा खलीफा बन गए। वहां ऐलान हो रहा है कि खुद रसूलुल्लाह, जिनके सक्सेसर की बात हो रही है, जिनके खलीफा की बात हो रही है, जिनके बाद का खलीफा, वो रसूलुल्लाह को भी एक तरह से इख्तियार नहीं। नऊज़ुबिल्लाह, तौहीन ना हो जाए, ये अल्लाह के हाथ में है। नबुवत अल्लाह देता है, रिसालत अल्लाह देता है, तो इनका सक्सेसर भी अल्लाह बनाता है। शबे मेराज पहला सवाल तो ये हुआ, तो अल्लाह ने कहा है हबीब, मैंने तुम्हारे भाई अली को तुम्हारा वसी और जानशीन बनाया, और जो अली से मोहब्बत करता है वो तुझसे मोहब्बत करता है, जो तुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अली से दुश्मनी रखता है वो तुमसे दुश्मनी करता है, जो तुमसे दुश्मनी करता है वो मुझसे दुश्मनी करता है, जो अली का साथ देता है वो तुम्हारा साथ देता है, जो तुम्हारा साथ देता है वो मेरा साथ दे रहा है, जो अली से जंग करता है वो तुमसे जंग करता है, जो तुमसे जंग करता है वो मुझसे जंग कर रहा है। अब इस तरह से मेरे मौला के फजाइल बयान किए जा रहे, और जो भी तुम्हारी उम्मत में शामिल है मैं हर एक को जन्नत में दाखिल करूंगा। शबे मेराज ऐलान हो रहा है कि उम्मत रसूल वाला हर शख्स जन्नती। मगर फिर एक ऐसा जुमला खुदा ने इरशाद फरमाया कि रसूल भी हैरान हो गए। खुदा ने कहा कि तुम्हारी सारी उम्मत को जन्नत में दाखिल करूंगा, सिर्फ उसको जो खुद ही जन्नत में जाने से इनकार कर दे, खुद ही वो मना कर दिया कि मुझे जन्नत में नहीं जाना। पैगंबर हैरान हुए कि ऐसा कौन इंसान जो जन्नत में जाने से इनकार कर देगा। कहा हबीब, ये वो शख्स है जो अली की विलायत को नहीं मानता, ये विलायत अली का इनकार कर रहा है, नहीं ये जन्नत में दाखिल होने से इनकार कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए जन्नत। और फिर आखिरी जुमला यह था कि इसी अली और तुम्हारी बेटी बतूल से मैं 11 मासूमों को पैदा करूंगा, जिनमें से आखिरी मेरी वो हुज्जत होगा जो तमाम दुनिया से जुल्म का खात्मा करेगा और अदल से इस दुनिया को भर देगा। वो हदीस जो आप जुमे के दिन नमाज के खुतबे में भी उलमा से सुनते हैं, अल्लाह इमाम जमाना के जरिए से दुनिया को इस तरह अदल से भरेगा जैसे जुल्म से भरी हुई थी उनसे उनके जाहिर होने से पहले। तो मेराज इस्लाम की एक तरह की स्टार्टिंग, अभी इस्लामी हुकूमत का एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं हुआ है, अभी इस्लामी हुकूमत एस्टैब्लिश भी नहीं हुई है, और इमाम जमाना का तस्किरा शुरू हो गया। फिर इसमें रसूल ने एक सवाल कर लिया। जाफरी सेंटर अटलांटा के बहुत सारे मोमिनीन ने इस साल मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इमाम जमाना पे बात करें। ये जाफरी सेंटर अटलांटा के मोमिनीन की रिक्वेस्ट नहीं है। शबे मेराज जब अल्लाह ने यह ऐलान किया कि तुम्हारी नस्ल में जो 11 पैदा होंगे अली और बतूल के जरिए से, तो आखिरी उसमें दुनिया में अदल का निजाम लाएगा। पैगंबर ने सवाल किया, या अल्लाह यह कब होगा, मेरा वो बेटा कब जाहिर होगा? और फिर खुदा ने इसके बाद पहला खुतबा अल्लाह ने दिया साइंस ऑफ जुहूर, कहा कि मेरे हबीब जब दुनिया के ये हालात हों, फिर कुछ इसमें निशानियां बताई गई, वो जो मैं मजलिसें पढ़ रहा हूं, अब जो लास्ट 3-4 मजलिसें हैं, ये वाली हदीस टुकड़े टुकड़े होके इन मजलिसों में आ जाएगी, तो रसूलुल्लाह ने यह इंटरेस्ट शो किया कि साइंस ऑफ जुहूर क्या है। अब नऊज़ु बिल्लाह तौहीन रिसालत ना हो, रसूल को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट मसला है साइंस ऑफ जुहूर का। लेकिन इसके बाद जब आखिरी हज के मौके पर सूरह मोहम्मद की आयत की तिलावत की, तो अब पैगंबर के जितने अहम सहाबी हैं वो सब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सलमान फारसी टॉप ऑफ द लिस्ट, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी अहम तरीन साहब, और ये सिलसिला फिर चलता रहा कि हर इमाम के सहाबी ये सवाल जरूर करते थे। और उसी में फिर एक हदीस कल बयान होना शुरू हुई थी, बल्कि दो दिन से बयान हो रही है, उसको दरअसल आगे बढ़ाना है। और वो ये है कि अल्लाह का रसूल साइंस ऑफ जुहूर एक अहम तरीन इंपॉर्टेंट साइन ये बता रहा कि दीन खुदा जो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें पैगंबर भी अपनी तरफ से कोई चीज नऊज़ु बिल्लाह ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। वलौ तकव्वला अलैना बाज़ल अकाबीर लक़ताना मिन्हु बिल्वतीन, ये मैंने बीच की आयत के चंद लफ्ज छोड़ दिए, कि अगर हमारा रसूल भी अपनी तरफ से दीन में कुछ चीजें कहेगा तो हम उसको भी गर्दन से पकड़ लेंगे। नऊज़ु बिल्लाह, ने ये मुझे ये जुमले नहीं कहना चाहिए, अगर क्या कुरान की आयत, पैगंबर का स्टेटस बहुत हाई, वो खाली दिल में कोई ख्वाहिश जाहिर करते हैं, अल्लाह उसी को हुक्म खुदा बना देता। सूरह बकरा दूसरा पारा सयकूल पहला पेज, अरे हबीब हमने किबला चेंज कर दिया क्योंकि तुम्हारे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई थी कि मुझे दूसरा किबला चाहिए। किबला कयामत तक के मुसलमानों के लिए एक सेंटर, हमारी तमाम नमाजें इसी के ऊपर। पैगंबर के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने उसको हुक्म खुदा बना दिया। पैगंबर का रुतबा बहुत बुलंद, लेकिन इस्लामिक उसूल बता रहा है कि यह अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। रसूल भी ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं, तमन्ना कर सकते हैं, हुक्म अल्लाह दे, चाहे वो रसूल के जानशीन का मसला हो और चाहे वो इस्लाम के किसी हलाल और हराम का मसला। मगर आखिरी जमाने में ये होगा कि जो काम रसूल भी नहीं करते थे, मैं फिर कह दूं कि हमारे अकीदे से कर सकते थे, नहीं करते, वो हम में से हर एक अपनी जगह अंजाम देगा। जिसका दिल चाहेगा हलाले खुदा बना लेगा, जिसका दिल चाहेगा हराम खुदा बना देगा। हलाल भी हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, हराम भी अपनी मर्जी से बनाएंगे, शरीयत हमारे लिए खेल बन जाएगी। ये वो जरा सा कल की हदीस से रब मिलाना, और एग्जाम्पल के तौर पे पैगंबर इस्लाम ने चार अहम तरीन गुनाह बताए जो गुनाह ने कबीरा। और यहां पर ये भी क्लियर कर दिया जाए कि ये जो जब हलाल और हराम और शरीयत के वाजिबात और अहकाम हर आदमी अपनी मर्जी से बनाने लगेगा, हमारे यहां तो मैंने कहा ना कि रसूल और इमाम भी ये काम नहीं करते, उनसे भी पूछा जाता है, कहते हैं रसूल कहते हैं मैं इंतजार कर रहा हूं कि अल्लाह क्या कहता। इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो हमारे यहां ये गलती आएगी, ये साइन ऑफ जुहूर आखिरी जमाने में रिवायत, ये भी एक साइन ऑफ जुहूर कि आखिरी जमाने में मुसलमानों में सबसे ज्यादा जिसको जलील किया जाएगा वो उलमा होंगे, सही आलिम। लोग ये पैगंबर की हदीस का जुमला सुनिए, किसी चोर और डाकू के मरने पर इतना खुश नहीं होंगे जितना एक सच्ची आलिम के मरने पर खुश होंगे। और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड हदीस है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये हलाल और हराम तो इसीलिए लोग बनाएंगे कि हमको आलिम से कुछ पूछना ही नहीं, हमको इससे कम है, हमको इससे छोटे हैं। लेकिन फिर आखिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर आपको डॉक्टर से मशवरा नहीं लेना है, आपको उससे इलाज नहीं कराना है, खुद ही आपको अपना इलाज करना है, तो नतीजा क्या निकलेगा? मौत या ऐसी बीमारी कि जो अब किसी के कंट्रोल में नहीं। चुनाव के आखिरी जमाने की निशानी में यह हदीस भी है जो बहुत मशहूर है। मुझे मालूम है कि जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है साइंस ऑफ जहूर, तो आप ये सारी चीजें नहीं सुनना चाहते हैं। आप सुनना चाहते हैं कि अमेरिका में क्या होगा आखिरी जमाने में, यूरोप में क्या होगा, जापान में क्या होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा, कौन बादशाह मरेगा, कहाँ पे जंगें होंगी, कहाँ पे फौजें जाएंगी। और फिर आप ये चाहते हैं कि बीबीसी और सीएनएन और स्काई न्यूज और जो दूसरे चैनल है उनकी न्यूज से टैली किया जाए हदीसों को। और मैं तो वो बातें बता रहा हूं जो आपको बड़ी जनरल टाइप की लग रही होंगी, लेकिन हम पहुंचेंगे वहीं पे। बस अब ये हमारी तकारीर आहिस्ता आहिस्ता एंड पर भी जा रही है और उस मौजू पर भी जा रही है। लेकिन अब ये पहले ये जर्नलाइज बातें भी समझ लीजिए कि आलिम से दूरी का नतीजा ये निकलेगा। अच्छा, यहां पे एक रिवायत में एक लफ्ज है, फासिक और फाजिर आलिम तो माशरे में छा जाएंगे और मुत्तकी और परहेजगार आलिम जलील बना दिए जाएंगे। यजीद के जमाने में यही था, मुआविया के जमाने में यही था, बनु उमैया के जमाने में यही था, बनु अब्बास के जमाने में यही था। झूठे झूठे आलिम सामने लाए जाते थे, इमाम मासूम को इग्नोर किया जाता था, कोशिश की जाती थी, फिर भी मजबूर होके उनको भी आना पड़ता था, लेकिन बहुत कम। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? अब देखिए जो हदीस में पढ़ रहा हूं यह भी बहुत मशहूर, ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु वला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु मसाजिदुहुम मामूरा वमिनल हिदायत खालिया अब्दानुहुम करीबा वकुलूबुहुम बईदा। ये तो आप बहुत सुनते रहते हैं, इसलिए बहुत तफसील में नहीं जा रहा। नतीजा ही निकलेगा कि कुरान होगा लेकिन नहीं होगा, कुरान होगा लेकिन नहीं होगा। ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, बस वो जो कुछ अरबी में लिखा हुआ है उतना ही कुरान रह जाएगा। ये तो कुरान रह जाएगा लानतुल्लाह इलल काज़िबीन, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ तो रह जाएगा लेकिन पूरा माशरा उन्हीं काज़िबीन से भर जाएगा जिनके ऊपर ये आयत लानत कर रही है। कुरान तो इसको कहते हैं ना कि जो लिखा हुआ है वो आपको इस्लामी सोसाइटी और मोमिनीन की कम्युनिटी में नजर आए। हमारा एक एक इमामबाड़ा, हमारा एक एक सेंटर, हमारी एक एक मस्जिद कुरान हो। तो अब ये कहा कि कुरान होगा, कुरान खत्म नहीं होगा लेकिन खाली लिखा हुआ कुरान। वला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, और इस्लाम का बस खाली नाम रह जाएगा, न इस्लाम नजर कहीं नहीं आएगा। हाँ, नाम रहेगा, ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि नाम खत्म हो जाएगा। पता चलेगा दुनिया में 1 नहीं 2 बिलियन मुसलमान, और इसी का तीसरा जुमला, इस्लाम का नाम रह जाएगा और मुसलमान भी खाली नाम के मुसलमान होंगे। ये पैगंबर की वो मशहूर हदीस है जो कम से कम 12 या 13 मुख्तलिफ दफा पैगंबर ने इरशाद फरमाई। और फिर जब इस्लाम खाली नाम का होगा तो उनकी मस्जिदें लोगों से भरी हुई होंगी। जिस मस्जिद में जाइए क्राउड बहुत ज्यादा, यानी माहौल ऐसा बनेगा कि बाकी मजहब वाले अपने प्लेस ऑफ वर्शिप को सेल कर रहे हैं, ऑन सेल, लोग ही नहीं आते, खाली पड़ी है। और मुसलमानों की हर मस्जिद जब भी बनाई जाती है तो वो छोटी पड़ जाती है, मान वाकई नहीं पब्लिक और बढ़ गई, भरी हुई है भरी हुई, लेकिन इंसानों से वमिन अल हिदायत खाली, हिदायत से खाली, हिदायत कहीं नहीं मिलेगी आपको। कुलूबहुम करीबा, मस्जिद में अजसादहुम करीबा, मस्जिद में लोग इतने ज्यादा होंगे कि जब खड़े होंगे या बैठेंगे किसी गैदरिंग में तो जिसे में एक दूसरे के अंदर होंगे, टकरा रहे होंगे, लेकिन वह कुलूबहुम बईदा, जितनी उनकी बॉडीज करीब होंगी उतना ही उनका दिल एक दूसरे से दूर होगा। और यह सब इसलिए होगा कि शरीयत को एक खेल बना लिया, और शरीयत को खेल इसलिए बनाया कि जो शरीयत के प्रोटेक्टर और शरीयत के हम तक पहुंचाने वाले प्रोवाइडर हैं उनको हमने छोड़ दिया। जब रसूलुल्लाह पर बहुत बड़ा ये इतराज हो सकता था अगर गदीर खुम का वाकया न होता, कि या रसूलुल्लाह एक आम अकल रखने वाला इंसान जब कोई चीज बनाता है तो फिर वो उसकी हिफाजत का भी इंतजाम करता, आप इतना बड़ा दीन इस्लाम लेकर आए और बगैर किसी मुहाफिज के छोड़ के जा रहे, इम्पॉसिबल। बाप भी दुनिया से जाता है तो अपने बच्चों के लिए कोई गार्जियन को मुकर्रर कर जाता, और आप बिलियंस मुसलमान और इनके लिए कोई प्रोटेक्टर नहीं है। गदीर खुम का वाकया जरूरी था, लेकिन वही एतराज फिर जमाने के इमाम पर आ जाएगा, जो आखिरी रसूल पर एतराज था, और जो हम बाकी मुसलमान भाइयों से एक सवाल करते हैं कि देखो कोई दुश्मनी नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, हम तुमसे झगड़ा नहीं चाहते, हमारे सवाल का जवाब दे दो कि छोटी सी प्रॉपर्टी की हिफाजत का इंतजाम किया जाता है इस्लाम ऐसे ही। लेकिन वही ऑब्जेक्शन पलट के हम पर आएगा आखिरी इमाम कि तुम मानते हो कि इमाम इस्लाम की और दीन की हिफाजत करने वाले हैं ना, तो जब इमाम गैबत में जा रहे थे तो वही तो गलती उन्होंने भी की जो तुम हमसे कह रहे। कोई अपना मुहाफिज छोड़ के गए इस उम्मत पर, अपने मानने वालों पर, देखिए उम्मत तो इमाम की औलाद है ना, अपनी इस औलाद की हिफाजत के लिए किसी को मुकर्रर करके गए। एक विल भी आदमी लिखता है तो उसके अंदर नाम लिखता है कि मेरी विल के ऊपर कौन अमल करेगा, क्या कहते हैं अंग्रेजी में एग्जीक्यूटर कौन होगा इसका, हमारे बच्चों के लिए मैं किसको सरपरस्त रख रहा हूं। तो अगर रसूल की रिसालत वो डिमांड कर रही है कि गदीर का वाकया होना चाहिए, तो इमाम जमाना की गैबत भी डिमांड कर रही है कि मर्जियत का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कोई तो होना जो इमाम की गैर मौजूदगी, गैर मौजूदगी मीन्स उनकी डिसअपीयर, उनकी गैबत में उम्मत के मसाइल को हल करे, उम्मत को सहारा दे। रिवायत है कि कयामत के दिन कहा जाएगा आले मोहम्मद के यतीमों को सपोर्ट करने वालों को लाओ, और उलमा लाए जाएंगे। बाप मर जाता है तो उसकी औलाद को यतीम कहा जाता है, इमाम गैबत में चले गए हैं तो हम यतीमाने आले मोहम्मद हैं, मगर इमाम ने मुकर्रर किया है, पूरा एक इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसको मर्जियत का इंस्टीट्यूशन कहते हैं। याद रखिए, अगर किसी को रसूल की रिसालत खत्म करना तो रसूल पर अटैक नहीं करेगा, वो अली की इमामत पर अटैक करेगा, क्योंकि ये बचाने वाले रसूल की रिसालत। और किसी को अगर इमामत के ऊपर अटैक करके खत्म करना है तो वो मर्जियत पे अटैक करेगा कि जब तक कि ये मर्जियत मौजूद है, खुद इमाम का अपने हाथ से बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूशन। तो गैबत के अंदर साइंस ऑफ जुहूर मराजे के हवाले से बहुत ज्यादा, उलमा के हवाले से, मराजे के हवाले से हमें बहुत ज्यादा डराया गया है, वार्निंग दी गई, अलर्ट किया गया। अच्छा, एक रिवायत भी है, ये रिवायत मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के लिए, हो सकता है आज ही के लिए, रिवायत यह है कि रावी यह कहता है कि मैं अपने पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहि सलातु व सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कुछ आखिरी जमाने के हालात डिस्कस होने लगे। आइम्मा ताहिरीन का तो यह बहुत ही फेवरेट टॉपिक था, तो उसमें इमाम ने एक मरतबा कहा खुरासान खुरासान सजिस्तान सजिस्तान। रावी कहता है कि इस तरह इमाम ने कहा कि इमाम के स्टाइल से और बात करने के तरीके से ही लगा कि इमाम हमें खुशखबरी दे रहे हैं। क्या कहा इमाम ने कि खुरासान का इलाका खुरासान का इलाका सीस्तान का इलाका सीस्तान का इलाका। रावी कहता है कि अंदाज यह था कि जैसे ये सीस्तान का इलाका है जो इमाम के शियों और इमाम के मानने वालों को बचाएगा उनके दीन की हिफाजत करेगा। अब इस सीस्तान के इलाके से ही ताल्लुक रखने वाली एक अजीम शख्सियत हम में से बहुत सो की मर्जी है आयतुल्ला सीस्तान और खुरासान के इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक इंतहाई अहम शख्सियत रहबर इनकलाब आगा खामेनई। खुरासान के हैं एक सीस्तान के हैं और दोनों का नाम उस हदीस में आया जिसमें आखिरी जमाने के शियों की हालत बताई जा रही। लेकिन इससे पहले कि मैं जरा सी कुछ स्पेसिफाइड साइंस ऑफ जहूर आपके सामने पेश करूं एक छोटा सा वाकया और बयान कर दूं ताकि यह अंदाजा हो जाए कि जो काम हमारे करने का नहीं है ना वो बिलावजह हमने अपने कंधों पे ले लिया। अब मैं उन लोगों से बात ही नहीं कर रहा हूं जो इंटेंशनली और पर्पजली उलमा के या मराजे के दुश्मन और ना ही वो मेरी बात सुनेंगे। आजकल तो इस साल का याम अज़ा आपके पास एक टाइम पे बहुत च्वाइस होता है। मजलिस में अगर आप जाए घंटे की ड्राइव करके इमामबाड़े में पहुंच के बैठ के आप जैसा भी स्पीकर है सुनना ही सुनना, वापिस अब मस्जिद छोड़ के 1.5 घंटे के ड्राइव में तो नहीं जा सकते। लेकिन ये ऑनलाइन में तो बहुत ही आसानी, इधर से क्लिक किया उधर पहुंच गया, उधर से क्लिक किया उधर पहुंच गए। तो मुझे पता कि कौन सा मोमिनीन का ग्रुप है जो मुझे पसंद सुनेगा। पसंद तो खैर कोई नहीं करता है, ना मुझे चाहिए पसंदीदगी, लेकिन जो सुन लेगा। तो उसके अंदर मैं ये बात बता रहा हूं कि कोई कुछ काम ऐसे हैं जो आपके करने ही के नहीं। अब ये जाफरी सेक्टर अटलांटा में इस वक्त अगर लाइट का कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो ये आपके करने का काम नहीं है कि आप खड़े होकर लाइट को ठीक करने लगे। एक ट्रस्ट है, एक कमेटी है, एक इंतजामिया है, वो इसको संभाल लेगी। और फर्ज कीजिए कि अगर उनको नहीं मालूम कि प्रॉब्लम हुआ है तब भी आपको ये इजाजत और इख्तियार नहीं, आप जाके उनको इन्फॉर्म करें, वो आके ठीक करेंगे। ये उनका काम है, ये आपका काम नहीं। और इसी तरीके से दुनिया के हर मुल्क में ये होता है कि अगर आपकी आंखों के सामने कोई कानून तोड़ रहा है आप जाके लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज को बताइए कि कानून तोड़ा है। आपको हक नहीं है कि आप किसी को पनिश करें और किसी को सजा दें और किसी को पकड़ लें। मिसालें बहुत हैं लेकिन टाइम तो मेरे पास कम रह जाता है। पता नहीं 47th ईयर है जब मैं मस्जिद से पढ़ रहा हूं, लेकिन अब तक मैं मस्जिद के शुरू के हिस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, आखिर में प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम वो ड्यूटी अपने जिम्मे ले रहे हैं जो हमारी ड्यूटी है ही नहीं। अच्छा कभी ऐसा होता है कोई काम आपकी ड्यूटी नहीं है लेकिन वो आप करते हैं, अच्छा काम होता है आपको इजाजत। कचरा उठाना आपका काम नहीं है लेकिन आपने देखा कि जाफरी सेंटर अटलांटा में कहीं टिश्यू पड़े हैं, कहीं चाय के खाली कप पड़े हैं, आपने उठा के उसको डाल दिया। अगर ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमको ये राइट भी नहीं है कि हम इंटरफेयर करें। आजकल हम यही कर रहे हैं। अब बात क्या है, तारीख शिया के बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े आलिम शेख मुफीद किस किस तरह से शेख मुफीद का इंट्रोडक्शन आपसे कराया जाए नाइजल बालागा हर मोमिन को पता है, सैयद रजी की किताब है, सैयद रजी स्टूडेंट है शेख मुफीद के, और इनके बड़े भाई जो इल्म में इनसे भी बड़े सैयद मुर्तजा, वो भी स्टूडेंट हैं शेख मुफीद के। अच्छा, स्टूडेंट तो बहुत है, मैंने दो के नाम क्यों लिए? इसलिए लिए कि शेख मुफीद अपने जमाने के मर्जे थे, और मर्जे का एक काम यह होता है कि लोगों को इश्तेहाद की तालीम दे। और उन्होंने रात को ख्वाब देखा कि शहजादी फातिमा पूरे हिजाब के साथ आई है, दो बच्चों को लेकर शेख मुफीद के सामने बच्चे बिठाए और कहा कि या शेख अल्लिम हुमल फिक, मैं अपने बच्चों को लेके आई हूं, तुम इसे दीन की तालीम दो। और शेख मुफीद की आंख खुल गई है ख्वाब देखते ही, और रोते रहे रोते रहे रोते रहे। खुदा बंदा, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है कि यह ख्वाब मैंने देखा, मैं और शहजादी के औलाद को तालीम दो। अगली सुबह जब वो मस्जिद में गए, क्योंकि हमारे हौजे में उमूमन मुश्तहदीन की क्लासेस मस्जिदों में होती, दिल नहीं लग रहा है आज स्टूडेंट्स को दर्स देने के लिए, रात का ख्वाब। उस जमाने के एक इंतहाई शरीफ सैयद घराने की एक इंतहाई काबिल एहतराम खातू अपने दो बेटों को लेके आती है, ठीक उसी तरह से जैसे रात को ख्वाब में शहजादी फातिमा को देखा, और उसी तरह लाके उन बच्चों को वहीं बिठाती है जहां रात को शहजादी ने असलैन को बिठाया था, और वही एक जुमला कहती है, या शेख मेरे इन बच्चों को दीन की तालीम दे। समझ गए शेख कि शहजादी का मैसेज क्या था। इतनी मेहनत से पढ़ाया कि एक सैयद रजी बने और एक सैयद मुर्तजा। सैयद रजी ने नैजुल बलागा जैसा मास्टरपीस हमारे सामने पेश किया, सैयद मुर्तजा को मौलाए कायनात ने एक टाइटल दिया आलमुल हुदा, ये हिदायत का आलम और फ्लैग है, मौला कहें जो खुद हिदायत है। और ऐसे बहुत सारे उनके शागिर्द थे, शेख तूसी भी इन्हीं शेख मुफीद के शागिर्द, जिन्होंने हौजा इल्मिया नजफ बनाए। जब आप मौला के रोजे से निकलते हैं और वादियो सलाम के कब्रिस्तान जाना चाहते हैं, तो रोजे से निकलने के बाद लेफ्ट साइड पर जो सबसे पहले मस्जिद पड़ती, वो शेख तूसी का घर था, वहीं पे हौजा बना था, वहीं पे आज उनकी कब्र। लेकिन शेख मुफीद का एक खास रोल है शिया हिस्ट्री कि शेख मुफीद के जमाने में इस्लामी दुनिया के हालात बहुत खराब हो गए थे, और इतने प्रॉब्लम आ गए थे कि डायरेक्ट इमाम जमाना ने शेख मुफीद को गाइडेंस दी, तीन खत अलग अलग टाइम पर इनके नाम भिजवाए, और टाइटल क्या था, अल अखुल करीम, ए मेरे इज्जत वाले भाई। इमाम जमाना का रिटर्न में लेटर आ रहा। अभी चार पांच महीने शेख मुफीद का जमाना बहुत डिस्कस हुआ था इस्लामी मीडिया में, शेख मुफीद का नाम नहीं आया था वो टाइम पीरियड, क्योंकि शेख मुफीद के टाइम पीरियड में कई साल मोर देन वंस हज हुआ ही नहीं। तो अब ये जो पिछले चार पांच महीने से एक डिस्कशन चल रहा था ना कि क्या इस्लामिक हिस्ट्री में इससे पहले कोई टाइम ऐसा गुजरा है कि हज नहीं हुआ, तो बाकायदा हिस्ट्री को जब ट्रेस किया गया तो ऐसे कई साल सामने आ गए, कई मौके शेख मुफीद के जमाने में भी हज नहीं हुआ था। और अगर आप वैसे मेरी पुरानी मजलिसें सुनी तो मैं 40 साल से कह रहा था कि बाद सीओ के दिमाग में यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जहूर इमाम की एक साइन यह है कि उस साल हज नहीं होगा। मैंने कहा गलत है ये, इससे पहले भी कई साल हज नहीं हुआ। इस पर इंशाल्लाह मैं कल या परसों बात करूंगा, अभी छोड़ दीजिए। तो शेख मुफीद अजीम तरीन मर्जे, बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल। इनके एक शागिर्द ने हौज़ इल्मिया नजफ बनाया, दूसरे ने नैजुल बलागा, तीसरे ने हिदायत के आलम का टाइटल मौला से लिया। उस जमाने में शियत की ये लीडर थे, शियत को लीड कर रहे थे, जो प्रॉब्लम का ही जमाना था, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ये शेख मुफीद बगदाद की मस्जिद में बैठे, बगदाद में आज भी आपको महल्ला करख नजर आएगा। यो जमाने में पूरा शिया महल्ला था, पूरी शिया बस्ती। जैसे आपकी ताजपुर और जमालपुर, पूरी शिया बस्ती, वहां पे ये दर्श देते थे। इसके बाद फिर जब इनके शागिर शेख तूसी ने वहां दर्श दिया और एक दफा शिया सुन्नी राइट हुआ और पूरा शियों का महला जला दिया गया, तब शेख तूसी वहां से शिफ्ट हुए नजफ। तो शेख मुफीद बगदाद में बैठे हैं, दर्श भी दे रहे हैं और लोग बहुत इंपॉर्टेंट मसले लेके आ रहे हैं कि एक मरतबा कोई शख्स बहुत ही घबराया घबराया मस्जिद में दाखिल हुआ, या शेख या शेख या शेख, बहुत अर्जेंट मसला है, फौरन जवाब दीजिए, बाकी सारी चीजें रोक लीजिए। कहा तेरा मसला क्या है? कहा बगदाद के करीब एक गांव में रहता हूं, वहां पे एक प्रेग्नेंट औरत का इंतकाल हो गया लेकिन पेट में बच्चा अभी जिंदा, और अब हमारे गांव में, गांव है वहां आलिम तो होते नहीं, गांव में डिस्प्यूट हो गया, आधे लोग कह रहे हैं कि बच्चा जिंदा है तो माँ का पेट काटो, बच्चे को निकालो, फिर माँ को दफन करो, आधे लोग कह रहे हैं कि मैयत की बेहुरमती तो हराम है, गुस्ले मैयत में भी ये इमाम ने हमें गाइडेंस दी कि पानी भी इस तरह से ना डालो कि मैयत को तकलीफ हो, पेट कैसे काटे, और पुराने जमाना है कोई एनेस्थेसिया वगैरह का तो सिलसिला ही नहीं, समझ में नहीं आता हम क्या करें, फौरन फैसला करना है वरना बच्चा मर जाएगा माँ के पेट। शेख बस यही फर्क होता है इमाम मासूम में और मर्जे में, ना मर्जे की नॉलेज कंप्लीट होती है, ना मर्जे हर वक्त इतना अटेंटिव रह सकता है, गलती कर सकता है मर्जे, इमाम गलती नहीं कर सकते, इमाम मासूम है, जो गलती करे वो इमाम नहीं होगा, मर्जे गलती कर सकता है। शेख उस वक्त पता नहीं किस ख्याल में थे, बेख्तियार कहा कि नहीं मैयत का एहतराम और रिस्पेक्ट लाजिम है, इसी तरह से औरत को दफन कर दो, बात खत्म हो गई। एक मर्जे के पास दिन में 500 आदमी सवाल करने आते हैं, कई साल गुजर गए, शेख इसी मस्जिद में बैठे हुए दर्श दे रहे, एक आदमी अपने साथ 5 साल 6 साल के बच्चे को लेके आया, शेख को सलाम किया, या शेख आपने मुझे पहचाना? शेख ने देखा, कहा नहीं नहीं पहचाना, तू कौन? तो कहा जब मुझे नहीं पहचाना तो इस बच्चे को कैसे पहचानेंगे? कहा कि नहीं पहचाना। कहा कि या शेख मैं वही आदमी हूं जो आपसे मसला पूछने आया था, और आपने कहा था कि उस औरत प्रेग्नेंट औरत को उसी तरह से दफन कर दूं, और मैं ये मसला लेके घोड़े पे बैठ के घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा था, गांव के करीब पहुंचा तो आपका मैसेंजर मुझे मिला। शेख चौंके, मेरा मैसेंजर? हाँ हाँ, वो एक आदमी आया था जो मुझे आवाज देके रोक रहा था और कह रहा था कि सुनो, तुमने शेख से मसला पूछा है ना, शेख का असल मसला कुछ और है, शेख का मसला यह है कि नहीं बच्चे की जान बचाना वाजिब है, माँ का पेट काटो, बच्चे को निकालो, फिर माँ को दफन करो। बिल्कुल टाइम पर आपने वो आदमी भेजा था, मैं गांव में एंटर होने वाला था, ये वही बच्चा, वरना आज ये नामो निशान नहीं होता, माँ के साथ कब्र में दफन होकर मर जाता। शेख को तो अच्छी तरह याद है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई मसला बता के फिर किसी आदमी को अपने मैसेंजर को भेजा, समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बच्चे को देखा है, बेख्तियार शेख रोने लग, अपना सर दीवार से टकरा दिया कि या शेख तुम लोगों को मसले बता रहे और एक मोमिन का बच्चा तुम्हारी वजह से मारा जाता, तुम कातिल होते। शेख ने ऐलान कर दिया कि आज से मैं फतवा नहीं दूंगा, मैं इतने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे नहीं ले सकता। सारे शिया परेशान, आज का जमाना होता तो मिठाइयां बांटी जाती, ईद सेलिब्रेट की जाती, एक दूसरे से लोग गले मिलते, और उमूमन इस टाइप के लोग जो मर्जियत के खिलाफ होते हैं ना, उनके यहाँ तो हिजाब विजाब भी नहीं होता है, तो औरतें और मर्द हाथ मिला रहे होते। उमूमन हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हैं जो एंटी मर्जे तो है लेकिन एंटी दीन और शरीयत नहीं है। शेख ने कहा कि नहीं भाई, अपने अमाल का जवाब कयामत में देना मुश्किल है, कुजा ये कि जिन जिन को मैं मसले बताऊंगा सबका जवाब मुझे देना पड़ेगा। यह हदीस में भी है, जब भी कोई मर्जी आपको फतवा बताता है आपकी जिम्मेदारी खत्म है, कयामत में खुदा पूछेगा ये काम क्यों किया आपके, हमारे मर्जी ने कहा था, अगर वो मर्जी सही है। अब सवाल जवाब गलती आपने की है, गुना आपने किया, सवाल जवाब उस मर्जी से होगा। शेख अब ये जिम्मेदारी, अपने अमाल की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती, फतवा देना बंद कर दी। चंद दिन गुजरे थे, मालूम है आपको कि हर शबे जुमा आम आदमी भी करबला की जियारत को जाता है, ये उलमा और मराजे भी, शेख بغداد سے کربلا جا رہے ہیں شب جمعہ زیارت کے لیے. پرانے زمانے میں تو ٹریولنگ اکیلے نہیں ہوتی تھی, اور اسلام منع بھی کرتا ہے کہ ٹریولنگ اکیلے مت کرو. چلے تو راستے میں کوئی مل گیا, پتا چلا کہ یہ اسی راستے پہ جا رہا ہے, کربلا نہیں جائے گا, کربلا کے قریب ایک گاؤں میں جائے گا, لیکن چلو وہاں تک تو ساتھ رہے گا نا. اب جب چل رہے ہیں تو راستے میں باتیں بھی شروع ہو گئی, اور شیخ حیران ہو گئے, یہ کون آدمی, اتنی اس کی نالج, اتنا اس کا علم. میں اس وقت شیعہ دنیا کا سب سے بڑا عالم, بلکہ تمام مسلمانوں میں سب سے بڑا عالم, اور اس کے سامنے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ آتے ہی نہیں ہے, جاہل ہوں, یہ کہاں چھپا ہوا ہے. اب باتیں ہو رہی ہیں اور شیخ اس سے اتنا امپریس ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جہاں سے دو راستے جاتے تھے, کربلا اور ایک اس آدمی کے گاؤں. شیخ نے کہا, اچھا خدا حافظ, تم اپنے راستے جاؤ, میں کربلا جا رہا ہوں. اس نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یار شیخ, آپ نے اتنی باتیں مجھ سے کی, ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہ آپ نے فتویٰ دینا کیوں بند کر دی, آپ نے اپنی تقلید کروانا کیوں بند کر دی. شیخ نے جواب دیا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی. اس آدمی نے کہا کہ یا شیخ, آپ فتویٰ دینا بند نہ کریں, آپ کا کام ہے مسئلہ بتانا, غلطی ہو جائے تو میں اس غلطی کو ٹھیک کرنے والا موجود ہوں نا. یہ جملہ کوئی شیخ سے کہے, یعنی آغا سیستانی سے کوئی یہ جملہ کہے, آغا خامنائی سے کوئی یہ جملہ کہے. شیخ نے چونک کے دیکھا, یہ جملہ تو ایک ہی آدمی کہہ سکتا, امام. چونک کے دیکھا تو وہ غائب ہو چکے تھے. شیخ نے اگلے دن سے دوبارہ فتویٰ دینا شروع کر دیا. تو یہ ڈیوٹی امام کی ہے, یہ ریسپانسبلٹی امام کی ہے, یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. عالم غلطی کرے, مجتہد غلطی کرے, مرجے کا فتویٰ فرض کیجئے, غلط ہو جائے صحیح ہو جائے, اٹس نن آف یور بزنس. بہت بدتمیزی کا انگریزی کا جملہ ہے, جب مجھ سے کوئی کہتا ہے تو میرے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی, لیکن اس وقت کہنا پڑ رہا ہے. ایک امام کے ہم قائل ہیں نا, ہمارا ایک امام ہے نا, پردہ غیبت میں صحیح ہے نا, اور یہ اس کے نائب ہیں. اگر یہ اتنی بڑی کوئی غلطی یا بلنڈر کریں گے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ انٹرفیئر کر کے اس کو ٹھیک کریں. فرض کیجئے کہ مجتہد غلط فتویٰ دے رہا ہے, نماز میں کہہ رہا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ, تشہد میں نہیں کہہ سکتے. فرض کیجئے آپ کے حساب سے وہ غلط نمازیں لوگوں کو بتا رہا, تو ایک اس کا آقا بھی موجود ہے, ایک اسلام کا محافظ بھی موجود ہے, وہ اس غلطی کو ٹھیک کر دے گا. فرضی مثال میں نے دی. تو سائنس آف ظہور میں یہ بھی کہ اس مرجعیت کے ادارے کو بہت کمزور کیا جائے گا, ان جنرل نہیں ان پارٹیکولر, اور اس کے علاوہ تمام علماء کی بھی صحیح عالم کی توہین کی جائے. اب روایت میں یہ کہ لوگوں کو بہکانے والے عالم کو بڑی عزت ملے گی, اور ہدایت بتانے والے عالم کی ہر جگہ توہین کی جائے. یہ سائنس آف ظہور. یہ اگر آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو ٹھیک, لیکن یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. ٹھیک ہے آخری زمانے میں بہت پیک پر اس کو پہنچا دیں, لیکن ہر دور میں یہ پرابلم رہا. ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم غیبت امام کے دور میں ہیں, تو جتنی برائی, جتنی خرابی, جتنی تہمتیں, جتنے الزامات ہیں, وہ سب مراجع پہ لگ رہے ہیں. اگر خود امام کا زمانہ ایسا ہوتا کہ امام ہمارے سامنے ہوتے تو بہت سارے سو کالڈ امام سے محبت کرنے والے یہی ساری باتیں امام پہ کر رہے ہوتے. تاریخ اسلام میں اس اعتبار سے سب سے مظلوم امام کون ہے؟ امام حسن مجتبی. کتنا مظلوم امام ہے, کیا کیا تہمتیں ان پہ نہیں لگائی گئی, کیا کیا ایلیگیشن نہیں لگائے گئے, کتنے ان کی مخالفت نہیں کی گئی, اور کن لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھی ہیں, ان کی فوج میں شامل ہیں. نہ تو میرے پاس ٹائم ہے کہ میں کوئی ڈرامے ورامے دیکھوں, نہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ, لیکن میں نے سنا ہے کہ مختار نامے کی جو سیریل ایران سے بنی ہے اس میں بھی وہ تھوڑا سے ماحول اور حالات دکھائے گئے. جو مرجعیت کے خلاف آج کل کچھ ہو رہا ہے, اس کو آپ एक मिलियन से मल्टीप्लाई करें, वो इमाम हसन का जमाना था। और सबसे बड़ा इल्जाम तो यही लगाया गया कि इमाम हसन मौत से बहुत डरते हैं, सेक्रीफाइस देने को तैयार नहीं, जिंदगी बहुत प्यारी, अपनी जान बचाने के लिए मुआविया जैसे इंसान से कंप्रोमाइज करके कुछ पैसे ले लिए और घर जाके बैठ गए। अब इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि ये मजालिस का एक खास टॉपिक है, लेकिन एक जुमला कह दूं, हसन मुश्तबा पे सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया गया कि हसन मुश्तबा जिंदगी से मोहब्बत करते थे, जान उनको बहुत प्यारी थी। हसन के लाल कासिम को यह साबित करना कि मेरे बाप पे जो तोहमत और इल्जाम लगाया गया और कितना गलत, आके देखो हसन के खून का असर क्या होता, आके देखो कि जो हसन की औलाद है वो तुमको बताएगी कि हसन मुश्तबा के पास मौत से डरने का कोई कंसेप्ट नहीं है, जिंदगी प्यारी नहीं। यही होता है ना, बाप बाप की पोजीशन को बेटे क्लियर करते हैं। हसन मुश्तबा को जो इतना नऊज़ु बिल्लाह डैमेज कैरेक्टर बताने की कोशिश की गई, कासिम ने अपने खून की कुर्बानी के जरिए से अपने बाबा के कभी क्रिस्टल क्लियर कैरेक्टर हमारे सामने पेश किया। यही वजह कि जैसी शहादत कर्बला के मैदान में हसन के इस लाल कासिम को मिली है, ऐसी शहादत कर्बला के किसी और शहीद को नहीं मिली। उम्मे फरवा का ये लाल 13 बरस का कासिम, 13 बरस की उम्र तो बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, जिंदगी के मजे लेने की उम्र होती है। लेकिन शब आशूर आ गई, इंशाल्लाह 2 दिन के बाद हम शब आशूर के मसाए पढ़ रहे होंगे, तो जो शब आशूर की सारी प्रोसीडिंग है वो हो गई। हुसैन ने मर्दों का भी इम्तिहान ले लिया, हुसैन ने औरतों को भी चेक कर लिया। अब आधी रात का वक्त गुजर चुका है, वो टाइम आ गया कि हुसैन को अब मुसल्ले पर बैठकर बस हुसैन है और अल्लाह। मुसल्ले पे आके बैठे हैं, खुदा आपको बार बार करबला ले जाए। आप में से ऑलमोस्ट हर आदमी पिछले 4-5 साल में करबला जा चुका है, खेमागाह में आज भी आका हुसैन का खेमा मौजूद है, उसी खेमे में बैठे नमाजें भी हो रही हैं, दुआएं भी हो रही हैं, अल्लाह से बातें भी हो रही हैं, आंखें बंद हैं, हाथ बुलंद हैं, चेहरा आसमान की जानिब है। हुसैन को ऐसा लगा कोई मेरे पहलू में आके बैठ गया। हुसैन ने एक बार गर्दन झुका के गर्दन को घुमा के देखा, क्या देखा, मेरे भाई हसन का लाल कासिम मेरे पहलू में आके बैठा। हुसैन को अपने भाई हसन से कितनी मोहब्बत थी। याद रखिए, जब इतनी मोहब्बत हो और वो आदमी ना रहे तो सारी मोहब्बत उसकी औलाद में मुंतकिल होती, खास तौर पर अगर वो बच्चा बहुत छोटा और यतीम, छोटा हो और यतीम हो जाए। एक बार हुसैन ने देखा कासिम, कहा कि बेटा कासिम इस वक्त आधी रात को मेरे पास क्यों आए, ये वक्त तो ऐसा है कि तुझे अपनी मां के पास होना चाहिए। करबला का बयाबान है, जंगल है, तेरी मां खेमे में अकेले। कहा चचा, मां ही ने तो मुझे आपके पास भिजवाया। मां मुझसे पूछने लगी कि कासिम बेटा, मैं तो सैदानी नहीं हूं, गैर खानदान की हूं, ये मेरी किस्मत खुल गई कि शादी हो के मैं फातिमा की बहू बनी और इस घर में आ गई, लेकिन बस मुझे यही डर है कि तेरी उम्र कम है, ऐसा ना हो कल वो तीर और तलवार देख कर, कटती हुई गर्दने देख कर तू डर जाए और दुनिया कहे कि हसन का बेटा तो ऐसा ना होता, ये उम्मे फरवा के खून की खराबी। मैं इतना कहीं अब आका से पूछ के बता दी कि क्या कल के मरने वालों में तेरा नाम है कि तेरा नाम नहीं है, ताकि तेरी मां के दिल को सुकून मिले। हाय दुनिया की हर मां कहती है मेरा लाल बच गया तो मुझे सुकून मिलेगा, करबला की मां कहती है मेरा लाल मारा गया तो मुझे सुकून मिलेगा। माही ने तो आपके पास भिजवाया, ए मुहिबान अहले बैत, आपकी आंखों के सामने इस वक्त खेमा गाह का मंजर आ रहा होगा ना, वो है उम्मे फरवा का खेमा, ये है आका हुसैन का खेमा। कासिम आके कहते हैं, तो चचा मैं अपनी मां को क्या जवाब दूं? हुसैन ने एक मर्तबा कासिम को देख के सवाल किया, हसन मुश्तबा पे तोहमती और इल्जाम लगाने वालों, या बुनैया कैफा इन नकल मौत, मौत की बात तो कर रहा है लेकिन मौत है कैसी, तुझे पता भी है? क्या जवाब दिया कासिम ने? देखिये 13 बरस के बच्चे का जवाब यही होना चाहिए, मौला की तरह कोई फलसफियाना खुतबा देने का मौका नहीं है। कहा कि अहला मिन अल असल चचा, शहद से ज्यादा मीठी चीज है मौत तो। ये उस हसन का लाल और वारिस कह रहा है जिस हसन पे दुनिया ने क्या क्या इल्जाम मौत और जिंदगी के हवाले से न लगा। लेकिन चचा ये तो बताइए, कल के मरने वालों में मेरा नाम है कि नहीं है? आका ने फिर भी जवाब न दिया, बस कासिम को गले से लगा लिया, कासिम का बदन सूंघने लगा। कासिम, कासिम बेटा, तुझमें से मुझे अपने भाई हसन की खुशबू आ रही, हाय काश मेरा भाई इस वक्त मेरे साथ करबला में मेरे सामने होता, वो देखता कि किस तरह से उसका भाई हुसैन घिर गया। लेकिन कासिम को तो एक ही फिक्र है, चचा मेरा नाम है कि नहीं है? आपने मुझे जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कल मरने वालों में मेरा नाम नहीं है। अब जो कासिम ने कहा तो हुसैन कहते हैं, कासिम तू अपना नाम पूछ रहा? अरे कल के मरने वालों में तो तेरे छोटे भाई असगर का नाम भी शामिल है, भाई इतना सुनना था, 13 बरस का कासिम है लेकिन हाशिमी शहजादा है, जोश में आके अंगड़ाई ली, कुर्ते के बंद टूटने लगे, चचा ये बेहया फौज हमारे खेमों में दाखिल होके असगर को शहीद करेगी। मेरा मजलूम आका हुसैन कैसे बताए कि कासिम बेटा तेरा असगर गहवारे में नहीं शहीद होगा, अपने बाप की आगोश में शहीद होगा। कासिम अपने खेमे में चले गए। अगला दिन अजीब दिन, खेमों में लाशी आना शुरू हो गए, यानी असाब इमाम मारे गए। अब बारी आ गई बनी हाशिम के शहजादों की, लाशी आ रहे हैं। जब कोई लाशा आता है मैं फरवा तड़प के देखती है, मेरा कासिम कहां है? कासिम नजर आ गया, पूछा बेटा तू अब तक जिंदा? यहां तक कि जब ओनो मोहम्मद के लाशे आ गए, अब जो कासिम मां के सामने आए, उम्मे फरवा ने नाराज होकर मुंह फेर लिया। कासिम ने घबरा के कहा, अम्मा तू मुझसे नाराज क्यों है? कहा तूने मुझे कितना शर्मिंदा कर दिया, अरे मेरी शहजादी जैनब के लाल मारे गए, मेरा बेटा मेरा कासिम अब तक जिंदा है? कासिम ने हाथ जोड़े और कहा, अम्मा किसी से पूछ ले, हर बार चचा के पास जाता हूं लेकिन मेरा चचा मुझे मख्तल में जाने की इजाजत ही नहीं दे रहा, मैं करूं तो क्या करूं? अब यहां दो रिवायतें, एक तावीज वाली रिवायत है वो भी आप सुनते हैं, दूसरी मैंने अपने उस्ताद से सुनी। उम्मे फरवा ने जो ये सुना तो एक मरतबा कासिम के बाजू को थामा और जैनब कुबरा के पास आई। अच्छा जैनब कुबरा वो खातून है कि सारे अरब की औरतें अपनी हाजतें लेके जैनब के पास आती थी। अली के जमाने से दस्तूर और तरीका यह था कि औरतों की मुश्किल कुशा तो जैनब, लेकिन जैनब को बड़ी तमन्ना थी कि खानदान वाले भी आते हैं, महल्ले वाले भी आते हैं, अरब की आम औरतें भी आती हैं, मेरे भाई हसन की बेवा उम्मे फरमा ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। अक्सर कहा करती थी उम्मे फरमा मेरी बड़ी तमन्ना है, सब मेरे पास आते हैं और तूने आज तक कुछ नहीं मांगा। उम्मे फरवा ने कहा, शहजादी जिस घराने में बगैर मांगे सब मिल जाए, मांगने की जरूरत ही नहीं है। आज कासिम का बाजू थाम के गई और कहा, शहजादी जैनब आपकी बेवा भावज आज आपके दरवाजे पर सवाली बन के आई है, एक सवाल है, क्या आज आप मेरी हाजत पूरी करेंगी? जैनब तो कब से तड़प रही। बेख्तियार कहा कि उम्मे फरवा, अरे मैं तो इंतजार कर रही थी, कभी कुछ मांग, बता क्या मांगेगी? शहजादी वादा करें मेरी हाजत पूरी करेंगी। जैनब ने कहा, अली की बेटी तुझसे वादा करती है, हाजत क्या? कहा मेरे कासिम को मख्तल में जाके मरने की इजाजत दिलवा दीजिए। क्या जैनब को अपना भाई हसन याद नहीं? जितनी हुसैन से मोहब्बत है जैनब को उतनी ही मोहब्बत हसन से। सर से पैर तक उम्मे फरवा को देखा, कहा मांगा भी तूने तो क्या मांगा, अरे मैं किस दिल से तेरी ये हाजत पूरी करूं? उम्मे फरवा ने कहा, लेकिन आपने वादा किया था। जैनब ने फिजा के जरिए हुसैन को बुलाया और कहा, بھیا تیری بہنیں خواہش کر رہی، زینب کی خواہش ہے میرے قاسم کو مقتل میں جانے دے۔ حسین نے کہا زینب یہ تم کہہ رہی؟ بھیا حسن یاد ہے نا، کہا کیا کروں، وعدہ کر چکی ہوں میں پروا سے، میرا وعدہ تجھے بچانا ہے۔ حسین نے کہا اچھا قاسم بیٹا مقتل میں جانے کی تیاری کر۔ ام فروا نے ایک مرتبہ روکا، کہا کہ شہزادی ایک زحمت اور دینا، اور یہ کہہ کے ایک امامہ زینب کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ قاسم کے بابا حسن مشتبہ کا امامہ، میرا دل چاہتا ہے میرا آقا حسین اپنے ہاتھ سے قاسم کو یہ امامہ پہنا کے میدان میں بھیجے، ہے تو بہت چھوٹا مگر حسن کا لال ہے، باپ کی شان کے ساتھ جائے، آج اسے اپنے باپ پہ لگنے والے الزامات کا جواب بھی دینا، یہ میرا جملہ ہے، باپ بن کے جائے، حسن مشتبہ کی شان کے ساتھ جائے۔ ایک بار اتنا چھوٹا تھا قاسم کہ گھوڑے پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، حسین و عباس نے مل کے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، مگر ہے حسن کا بیٹا، ہے شیر خدا کا پوتا، ایسا جہاد کیا وہ شامی پہلوان کے ساتھ جوان بیٹے، قاسم کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے، آخر میں خود وہ آیا اور قاسم نے حملہ کیا، ایک مرتبہ پکار کے کہتا ہے ارے میری فوج والوں آ کے مجھے بچاؤ، ادھر فوج والے دوڑے، قاسم پہ 30,000 کی فوج نے ایک ساتھ حملہ کیا، 13 برس کا گل بدن، 30,000 کا حملہ۔ ایک بار قاسم نے پلٹ کے آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے، مقتل میں لکھا ہے، یہ آواز کئی شہیدوں نے دی تھی مگر اتنی تیزی سے حسین کسی کی آواز سن کے نہ دوڑے جو قاسم کی آواز سن کے دوڑے، اتنے جلدی پہنچے کہ لشکر یزید بھی نہیں سوچ سکتا تھا، گھبرا گئے، دائیں طرف کے گھوڑے سوار بائیں طرف گئے، بائیں طرف کے گھوڑے سوار دائیں طرف گئے، اور قاسم جو زمین کربلا پہ گر چکا ہے، یہ سارے گھوڑے سوار قاسم کے بدن پر سے گزرے۔ ایک کتاب میں میں نے دیکھا امام زمانہ قاسم کو سلام کر رہے، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئیں، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئیں، اور حسین قاسم کے سرحانے گئے، ایک مرتبہ کا بیٹا تیرے چچا کے لیے یہ کتنا مشکل وقت ہے، تو نے پکارا اور میں وقت پہ نہ آ سکا۔ قاسم نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ کہا بابا آپ آ گئے، میرا سلام لیجیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آخر قاسم نے حسین کو دیکھ کے بابا کیوں کہا، کیا موت کی وجہ سے قاسم بھول گئے کہ یہ حسین ہے؟ نہیں، ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، خیمے سے حسین دوڑ کے آئے، اور جنت البقیع سے حسن مصطفیٰ دوڑ کے آئے ہوں گے، اے میرے لال، اے میرے قاسم، گھبرا نہیں، تیرا بابا تجھے سہارا دینے آ رہا ہے۔ اور دونوں بھائی ایک وقت میں قاسم کے سر آنے پہنچے، حسن کا لال بدن ٹکڑے ٹکڑے، حسین نے ابا بچھائی، قاسم کا بدن اس پہ جمع کیا، ابا لے کے خیمے کی جانب چلے، لیکن وہ لاشا سلامت تو ہے نہیں نا، خیمے کے دروازے پہ رک گئے۔ ہر شہید کا لاشا لے کر حسین خیمے کے اندر جاتے، وہاں بیویاں انتظار کر رہی ہیں، لاشا آنے والا ہے، لیکن لاشا نہیں آیا، وہ حسین کے آنے کی آواز تو آئی، پیروں کی آواز، در خیمہ پہ رک گئی۔ زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ در خیمہ پر پہنچی اور گھبرا کے کہا بھیا قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ تیرے ہاتھ تو خالی نظر آ رہے۔ حسین نے ابا کی طرف اشارہ کیا اور کہا زینب بہن، میرا قاسم اس ابا کے اندر ہے، لیکن دیکھو آہستہ بولو، ایسا نہ ہو کہ ام فروا سن لے، کوئی ماں اپنے لال کی حالت ایسی تو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ام فروا تو زینب کے پیچھے پیچھے ہی تھی، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا آقا ذرا مجھے دکھا تو دیں، میرا قاسم کس حالت میں ہے؟ اب حسین نے ابا کھولی، ماں نے بدن کے ٹکڑے دیکھے اور ایک بار آواز دی، اے شہزادی زینب، اے کلثوم، اے رباب، اے لیلہ، اے رقیہ، سب آ کے مجھے مبارکباد دو، ارے آج کربلا کے میدان میں میری قربانی تو سب سے زیادہ کام آئی۔ اجرکم اللہ، حسن کے اس گلبدن قاسم کا واسطہ، ام فروا کی زندگی بھر کی امیدوں کے مرکز اس قاسم کے پامال لاشے کا واسطہ، فاطمہ زہرا کے پوتے کا واسطہ، قاسم کے ماننے والے، خدا ان کے اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی اولادوں کو سلامت رکھے، غم حسین کے علاوہ ہمیں ہر غم سے محفوظ فرمائے، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.